समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल और खबर होगी और डेडलाइन में बात करेंगे अर्धभूमि पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन। शगुन, आपको मेरा नमस्कार। और दर्शकों, आज वसंत पंचमी है, हम दोनों की तरफ से सभी सुनने वालों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं।
जी डेफिनेटली, वेरी वेरी वार्म विशेस फ्रॉम बोथ ऑफ अस टू यू ऑल। वेल, नमस्कार टू यू आल्सो विनय, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। वेल, दिस इज शगुन चोपड़ा विद विनय। एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वेल, आवर प्रोग्राम हैज ऑल द इंटरेस्टिंग स्टफ कंसिस्टिंग ऑफ न्यूज। वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज पर्टिनेंट टॉपिक एज विनय टोल्ड यू इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, along with capsules, tributes and a lot more. So stay with us for the next 30 minutes, but we begin with the headlines. Yes. First, top leaders of political parties hold back-to-back rallies for Delhi Assembly elections with only 2 days left for campaigning.
GST राजस्व संग्रह जनवरी में 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.3% अधिक है।
Canada announces 25% retaliatory tariffs on imports from America. China and Mexico also oppose the US move of new import tariffs.
आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
India wins ICC Under 19 Women's T20 World Cup, defeating South Africa by 9 runs. Now listeners, it's time for our segment Dateline India. As we told you in the beginning, today we will talk about World Wetlands Day. Well, wetlands, first talking about that, wetlands are ecosystems in which water is the primary factor controlling the environment and associated plant and animal life. Well, a broad definition of wetlands includes both freshwater and marine and also coastal ecosystems such as lakes, rivers, underground aquifers and all human-made sites such as fish ponds, rice paddies, reservoirs and salt pans. So, every year on February 2, which is today, World Wetlands Day highlights the crucial role these ecosystems, which I talked about, play for people, nature and culture. Let's talk about this year's theme, Vinay. It is about protecting wetlands for our common future. Reminds us, and this particular theme reminds us of the benefits which wetlands provide us for biodiversity and the overall human well-being. Wetlands are among the world's most productive ecosystems and they are very critical for wildlife preservation as well, Vinay. Wetlands help us to cope with the impacts of climate change and secure critical freshwater resources. The climate change, the impact of this has been experienced
worldwide.
जी, एंड वेटलैंड हैव ऑल्सो शेप्ड ह्यूमन कल्चर्स ओवर मेनी मेनी सेंचुरीज एंड इंस्पायर्ड आवर क्रिएटिविटी। वी नीड हेल्दी वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर आवर वेलबींग।
अर्धभूमि गिरावट और हानि की उच्चतम दर वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से है। वैश्विक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों में वर्तमान नकारात्मक रुझानों के संकेतक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चालकों जैसे तेजी से मानव जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर उत्पादन और संबंधित तकनीकी विकास, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के जवाब में जारी रहने का अनुमान है। अर्धभूमि जंगलों की तुलना में 3 गुना तेजी से लुप्त हो रही है। पिछले 50 वर्षों में विश्व की 35% से अधिक अर्धभूमि नष्ट हो गई है। मानवीय गतिविधियां जो अर्धभूमि के नुकसान का कारण बनती हैं, उनमें कृषि और निर्माण के लिए जल निकासी और भराव, प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और संसाधनों का अत्यधिक दोहन शामिल है। आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन भी शामिल है।
Well, this vicious cycle of wetland loss, this threatened livelihoods and deepening poverty is the result of mistakenly seeing wetlands as wastelands, rather than life-giving sources of jobs, incomes and essential ecosystem services. And there is also a key challenge, which is to change mindsets to encourage governments and communities to value and prioritize these very essential wetlands.
इसके लिए सर 1971 में लोग मिले थे आपस में. विश्व वेटलैंड दिवस की जड़ें 1971 से चली आ रही हैं. रामसर कन्वेंशन से शुरू होकर जिसे आधिकारिक तौर पर आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है. यह दिन वेटलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करता है. रामसर कन्वेंशन दुनिया भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है. 170 से अधिक देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं कि महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की पहचान करें और उनकी रक्षा करें, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीतियां विकसित करें और वैज्ञानिक अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें. शगुन, अगर 170 देश इस पे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आ ही जाएगा.
एब्सोल्युटली, यू आर राइट अबाउट दैट. And let's give our listeners some numbers, Vinesh, shall we? As of 2025, there are over 2,500 Ramsar sites globally, covering more than 250 million hectares of wetlands. And India is one of the contracting parties to Ramsar Convention, which was signed, as Vinesh told you, in 1971. Earlier, in August 2022, India achieved a significant milestone of taking the total number of Ramsar sites to 75. During the 75th year of independence. Due to a significant policy push from the government of India, the number of Ramsar sites has increased from 26 to 85, and this has happened in the last 10 years, making it the highest number in South Asia in wetland conservation.
Almost double se bhi zyada.
Ji.
इसमें सतत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समर्पित लगभग 1.35 मिलियन हेक्टेयर भूमि शामिल है. कुछ उल्लेखनीय रामसर स्थलों में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ओडिशा में चिल्का झील, राजस्थान में केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में लोकटक झील और जम्मू कश्मीर में वुलर झील शामिल हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है. आर्द्रभूमि संरक्षण को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 पेश किया, जिसमें आर्द्रभूमि की पहचान और संरक्षण और सतत प्रबंध योजनाएं और आर्द्रभूमि संरक्षण पहल में सामूहिक भागीदारी शामिल है. सरकार का इंटरेस्ट पूरी तरह से कानून भी आ गया है.
जी. And Vinay, despite these rules, challenges such as, let's talk about the challenges again, the pollution, illegal encroachments and climate change, they continue to threaten wetlands. So, stronger enforcement and I think community-driven conservation programs are needed.
इसके लिए भी convention होना चाहिए.
जी,
कि भाई इस पे मत encroachment करो, जिससे हम बचे रहेंगे.
Right.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मुंबई अगेन. एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया, वी हैव अ रिपोर्ट ऑन दिस बाय आवर मुंबई कॉरेस्पॉन्डेंट, सो लिसन इन.
अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट, 40% ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड्स एंड मोर देन अ बिलियन पीपल ग्लोबली डिपेंड ऑन वेटलैंड्स फॉर देयर लाइवलीहुड. द रामसर कन्वेंशन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड हैज ओवर 2,500 रामसर साइट्स वर्ल्ड वाइड, ऑफ विच इंडिया हैज 85 एंड महाराष्ट्र हैज 3. Gurudas Mulkar, Professor and Director at the Center for Sustainable Development at the Gokhale Institute of Politics and Economics in Pune, tells us more about this.
A Ramsar site essentially is a wetland. So wetland means it's a surface water aquatic ecosystem. These ecosystems, these wetlands have international ecological importance. And what happened is in 1971, when people came together under the UNESCO, they met at a city in Iran which was known as Ramsar. It's a very famous city in Iran. And this convention was signed there, and therefore it came to be known as the Ramsar Convention.
Maharashtra has 3 designated Ramsar sites, Nandur Madhameshwar, Lonar Lake and Thane Creek. Let's hear more from Mr. Nulkar.
So all of these wetlands have ecological importance because these are bird sanctuaries, not just for the local residential birds, but also for the migratory birds. The Nandur Madhameshwar is a man-made Ramsar site because there is a dam and the waters of the river have been arrested. And behind that is the wetland created. It's on the Deccan Plateau and it's a very shallow piece of land. So therefore, the birds are able to stand in that water depth. And you will see Nandur Madhameshwar becomes a very very rich site for wetland birds. Lonar Lake, on the other hand, it was formed due to the meteor impact in Buldhana district. So the water has got a little bit of salinity in it. Thane Creek is an estuarine wetland. So there is fresh water plus salt water coming in. And this mixing also creates mangroves and habitats for the mangrove forest, which become a very, very important part for species to get their food, forage, as well as breed. So these are the three important sites.
Let us conclude with a quote from the Ramsar Convention itself, which says, "Wetlands are the soul of our landscape, the filters of our water, and the beating heart of biodiversity." This is Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और वहां पे शिल्पियों और कारीगरों ने अपने हस्तशिल्प भी रखे हैं, तो उनके लिए वहां पर क्या मंच उपलब्ध है, इसकी एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं।
एक जिला एक उत्पाद स्थानीय कारीगरों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र सरकार की इस पहल ने कई कारीगरों को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार की पहुंच प्रदान की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक कारीगर नितिन पाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के कारण उसका कारोबार बढ़ा है और लोग उसके उत्पाद को खरीद रहे हैं।
हमारा गन्ने का प्रोडक्ट है, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार है। हमने महाकुंभ मेले में दुकान लगाई है, दुकान पर भीड़ आती है, लोग बाग देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है उचित मात्रा में बिकता है और अच्छा रेट भी मिलता है।
वहीं कौशाम्बी के रहने वाले एक अन्य शिल्पकार ब्रजेश कुमार मिश्रा ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को उसके उत्पाद पसंद आ रहे हैं।
स्टॉल लगाए हुए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, केला चिप्स पत्तल दोना अच्छी बिक्री है यहाँ पर, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है स्टॉल लगाने से।
एक जिला एक उत्पाद पहल देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
Well, continuing with Mahakumbh, we have another update that railways will operate more than 400 Mahakumbh Mela special trains from various railway stations in Prayagraj on the occasion of 3rd Amrit Snan on Basant Panchmi, which will be held tomorrow. And this is crucial as it will provide seamless connectivity and uninterrupted travel for millions of pilgrims. We have more on this from our correspondent covering the Mahakumbh.
Railways has made elaborate arrangements to cater the rush of devotees during the Amrit Snan on Basant Panchmi. Talking to Akashwani News, Chief Public Relations Officer, North Central Railway, Shashikant Tripathi said, Railway is making same preparation on Basant Panchmi as they had done on Mauni Amavasya.
So, हम लोगों ने जो तैयारी मौनी अमावस्या के स्केल के हिसाब से प्लान की थी, उसी स्केल पे हम अभी भी बसंत पंचमी के लिए भी अपनी तैयारियां पूरी उसी स्केल पे मेंटेन किए हुए हैं।
Mr. Tripathi said, Railways has made robust arrangements at the premises of all the railway stations to provide medical services to the devotees. He said a total of 32 medical booths equipped with doctors and paramedical staff are functional at Prayagraj Junction and 8 other railway stations.
34 हमारे मेडिकल बूथ हैं जो प्लेटफॉर्म पे और यात्री आश्रय शेड पे उपलब्ध हैं, जो कि यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम है। इसके अलावा हमारे प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी और छौकी, इन स्टेशनों पे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन रूम भी स्टेब्लिश किए हुए हैं। प्रयागराज जंक्शन में 6 बेडेड है और बाकी जगहों पे 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है।
रेलवे हैज आल्सो सेट अप होल्डिंग एरियाज वेयर पैसेंजर्स कैन वेट बिफोर प्रोसीडिंग टू देयर respective destination. With Dipendra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Prayagraj.
Now let's turn our attention to the tribal festival of India, the Araku Chali Utsav, which started on Friday in the Araku Valley region of Andhra Pradesh. This is a 3-day festival which has seen participation of tribal communities across India. Let's listen to more on this from our correspondent.
In an effort to preserve indigenous traditions while integrating them into the modern world, the government of Andhra Pradesh is organizing the Araku Chali Utsav, the winter festival. Set against the scenic backdrop of eastern ghats, the festival is a significant event for the local tribal communities of Andhra Pradesh. District Collector A.S. Dinesh Kumar inaugurated the event in a traditional fashion by blowing the trumpet. The festival showcases heritage, art, music and dance forms of the region, making it a significant attraction for tourists and cultural enthusiasts. The event also seen participation of tribal communities from Nagaland, Manipur, Uti, Rajasthan and Chhattisgarh. The three-day festival holds hot air balloon and helicopter rides for the tourists, also with the food and product stalls featuring respective communities. The government is organizing several adventure events like trekking, cycling as a part of Utsav. The district collector invited tourists to the festival to experience the indigenous culture of the tribals. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल।
Well, first, Vinay, let's focus on cricket. India has retained their ICC Under-19 Women's T20 World Cup title, beating South Africa by 9 wickets in the final match at the Bahamas Oval in Kuala Lumpur, Malaysia. And Gungadi Trisha's unbeaten innings of 44 runs helped Nikki Prasad-led Women in Blue to chase the target of 83 runs in the 12th over. She also got the Player of the Match, Player of the Match award, and Sanika Chalke also contributed with 26 runs and remained unbeaten. Earlier, South Africa got bundled out for just 82 runs. Mika Fanthur scored highest 23 runs. For India, Gungadi Trisha bagged 3, while Vaishnavi Sharma, Ayushi Shukla and Parunika Sisodia bagged 2 wickets each. Shabnam Mohammad Shakil, she also took a wicket.
Shakun, jis tarah se ye World Cup shandar tarike se hamari ladkiyon ne jeeta hai, ये महिला क्रिकेट के बहुत अच्छे भविष्य को दर्शाता है भारत में।
Right, such a great achievement by them again.
बिल्कुल। और क्रिकेट में ही आगे बात करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एक दिवसीय मैच भी खेले जाएंगे। पहला मैच 5 फरवरी को, दूसरा 9 फरवरी को और तीसरा 12 फरवरी को खेला जाएगा। उधर फुटबॉल में झारखंड के जमशेदपुर में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज जमशेदपुर FC का सामना FC गोवा से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।
Now listeners, we'll give you some cultural updates. The Ministry of Culture, in collaboration with Akashwani, launched a special classical music program, Har Kant Mein Bharat, at Akashwani Bhavan in New Delhi today. This program will be broadcast live from 21 Akashwani centers every day from today until February 16, from 9:30 to 10:30 a.m. The event was inaugurated by the Secretary of the Ministry of Culture, Arunish Chawla, and CEO of Prasar Bharati, Gaurav Dwivedi. Director General of Akashwani, Dr. Pragya Paliwal Gaur, was also present on the occasion. Talking exclusively to Akashwani, Secretary of the Ministry of Culture, Arunish Chawla, mentioned that Har Kant Mein Bharat will provide a platform for young artists to showcase their talent to the nation. He added that this program will feature all forms of music, including classical, folk and tribal.
हर कंठ में भारत संस्कृति मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इसके तहत जो हमारे यंग कलाकार हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, उन्हें मौका दिया जाएगा कि हर क्षेत्र में अपने अपनी कलाओं के अनुसार और अपने दक्षता और अपने एरिया के अनुसार जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। कंठ में भारत के माध्यम से देश भर में हमारी जितनी क्लासिकल, फोक और उस तरह के जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और हमारा म्यूजिक है, उन सभी को प्रसारित किया जाएगा।
CEO Prasar Bharati Gaurav Dwivedi said this initiative gives over 600 artists the opportunity to present their talents from nearly 21 Akashwani centers. He also encouraged people to listen to the program and share their feedback to support the artists.
हर कंठ में भारत कार्यक्रम जो आज आरंभ किया गया है, आकाशवाणी के 21 केंद्रों से लगभग 600 से अधिक कलाकारों को मौका मिलेगा अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन श्रोताओं के लिए कर सकें। तो मैं देश भर के श्रोताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को रोज सुबह 9:30 बजे सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेजें।
Addressing the occasion, Director General of Akashwani, Dr. Pragya Paliwal Gaur, lauded the initiative, stating that it is a unique effort by the Ministry of Culture that will help not only artists but also Akashwani expand its listenership.
आज का जो दुर्लभ संयोग है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का इस तरह से एक संयोग बना है, आज हम लोग ये विशेष संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत लॉन्च कर रहे हैं। ये 21 केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा एक साथ, जो सेक्रेटरी कल्चर का जो एक विजन था कि पूरा देश में शास्त्रीय संगीत गूंजे, और इसमें आकाशवाणी की एक प्रमुख भूमिका है, आकाशवाणी के कलाकारों की प्रमुख भूमिका है, उससे और बढ़ेगा।
And now some news from defense sector. Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully conducted 3 successive flight trials of very short-range air defense system from Chandipur off the coast of Odisha. These tests were carried out against high-speed targets flying at very low altitude. During all the 3 flight tests, the missiles intercepted and completely destroyed the targets, having reduced thermal signature mimicking low-flying drones at different flying conditions. The flight tests were carried out in final deployment configuration, wherein 2 field operators carried out weapon readiness, target acquisition, and missile firing. Well, the very short-range air defense system is a man-portable air defense system designed and developed indigenously by Research Center Imarat in collaboration with other DRDO laboratories and development-cum-production partners. The missile system has the capability to meet the needs of all the 3 branches of the armed forces, Indian Army, Navy and Air Force. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ था।
अमृत कौर ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और 1918 में भारत लौट आई। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होकर वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। महात्मा गांधी से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था,
जिस बात ने मुझे बापू की ओर आकर्षित किया वो थी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन और नारी शक्ति में उनका विश्वास। ये उस देश की एक महिला के लिए साहसिक आह्वान था, जहां महिला घरेलू कार्यों में उलझी रहती थी और अपने स्वामी की सेवा के लिए ही उपयुक्त मानी जाती थी।
प्रारंभ में उन्होंने खुद को सामाजिक सुधारों, खासकर महिलाओं से संबंधित सुधारों में शामिल किया। नतीजतन उन्होंने पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में मदद की और बाद में इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1930 में उन्हें दांडी मार्च में भाग लेने के लिए कारावास की सजा हुई। उन्होंने साबरमती आश्रम में शामिल होने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया।
ब्रिटिश अधिकारियों ने राजकुमारी अमृत कौर पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 1937 में उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के लिए सद्भावना मिशन पर गई थीं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत की अपनी लड़ाई में वे संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक बनी। वे मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति और अल्पसंख्यकों संबंधी उपसमिति की सदस्य भी थी।
स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की भी स्थापना की। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। राजकुमारी अमृत कौर आजीवन लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी वेलालोर अन्ना स्वामी सुंदरम को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1896 को कोयम्बतूर में हुआ था। वे महात्मा गांधी के सहयोगी और मदन मोहन मालवीय के विश्वास पात्र थे।
गांधी महान।
1915 में गांधी जी को सुनकर सुंदरम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और एक शिष्य के रूप में गांधी जी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उनके उत्साह से प्रभावित होकर गांधी जी उन्हें अहमदाबाद ले गए, जहां सुंदरम गांधी जी के नव स्थापित साबरमती आश्रम के पहले सदस्यों में से एक बन गए।
कोयम्बतूर और मद्रास वापस आने पर सुंदरम ने गांधी जी की ग्राम विकास की अवधारणा को लागू करने और बुनाई और कताई गतिविधियां शुरू करने की दिशा में काम किया। सुंदरम ने तमिलनाडु के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों सी राजगोपालाचारी, सी विजय राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर के साथ घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। उनके मार्गदर्शन में और गांधी जी के समर्थन से वे 1925 में वाइकोम सत्याग्रह, 1930 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा अभियानों में लगे रहे। 1931 की शुरुआत में उन्हें मद्रास में गिरफ्तार किया गया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुंदरम को यूरोप भेजा, जहां उन्होंने कई देशों की यात्रा की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अपनी 30 वर्षों की सेवा के दौरान सुंदरम ने विश्वविद्यालय और इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। बेल्लालोर अन्ना स्वामी सुंदरम का जीवन सद्भाव और एकता की अवधारणा के माध्यम से धार्मिक सीमाओं से परे एक मार्गदर्शक का प्रतीक है।
और श्रोताओं, अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिन्होंने आज के दिन या तो हमारा साथ छोड़ा या जिनका आज जन्मदिन है। और सबसे पहले आज बात करेंगे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार थे। उनका अधिकांश लेखन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था। आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास रोचक और दिल को छूने वाले थे। इनकी प्रमुख कृतियां गोली, सोमनाथ, वयम रक्षाम और वैशाली की नगरवधु हैं।
Now let's talk about philosopher, logician, mathematician Bertrand Arthur William Russell. He had influence on mathematics, logic, set theory and various areas of analytical philosophy. He believed, and this is interesting, that one should apply reason and logic in solving problems. He was also curious about science, politics and education, among many other things.
अब हम बात करेंगे गोविंद शंकर कुरुपु की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की थी। उसके बाद 2 वर्ष तक वो यहाँ वहाँ अध्यापन कार्य भी करते रहे। महाकवि गोविंद शंकर कुरुपु की 40 से अधिक मौलिक और अनुदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं।
Now let's talk about Gene Kelly. Well, he could sing, dance, act and direct, and he could do all these very well. His love for movement and dance sent him to New York on a search for his destiny. Well, Kelly made his debut in musical Leave It to Me in 1938, but didn't hit superstardom until he starred in Pal Joey's On Broadway. And for you listeners, we have this wonderful song performed by him, I Like Myself.
Why am I feeling so good? Why am I feeling so strong? Why am I feeling when things could look black and that nothing could possibly go wrong? This has been a most unusual day. Love has made me see things in a dim.
अब बात करेंगे मोटूरी सत्यनारायण की, जिनका आज जन्मदिवस है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन के संगठक, हिंदी के प्रचार प्रसार विकास के युग पुरुष, गांधी दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रतीक, हिंदी को राजभाषा घोषित कराने और उसके स्वरूप का निर्धारण कराने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। मोटूरी सत्यनारायण केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संस्थापक भी थे और उन्हें पद्मभूषण और गंगाशरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Now let's talk about Graham William Nash, musician, singer and songwriter. Today it's his birthday. He is known for his light tenor voice and for his contributions as a member of the Hollies and Crosby, Stills and Nash, both of which are bands. Nash is also a digital image printing pioneer. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of this particular band, Crosby. And now for you listeners, we have this wonderful song by him, Teach Your Children.
You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the best is just a goodbye. Teach your children well, 'cause their father.
और श्रोताओं, इसी के साथ समय है अब आपसे अनुमति लेने का, तो मुझे और मेरी सहयोगी शकुन चोपड़ा को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।